जयमा सावित्री, लास्ट टाइम, पिछली बार हमने पढ़ा था अभीप्सा का जन्म। अब ये सृष्टि में ये दो प्रोसेस एक साथ चलती हैं, पैरेलल चलती हैं। एक है जो बाहरी और एक है आंतरिक। और श्री अरविंद जो शब्दों के दिव्य जादूगर हैं, ऐसी जादूगरी दिखती नहीं है, वो एक ही वर्णन में दोनों चीजें साथ साथ दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल जैसे वेदों की राइटिंग्स है, एग्जैक्टली वही मेथड है कि आप बाहर से वो उषा का वर्णन कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, और उसमें एक इनर प्रोसेस भी बता रहे हैं। इनर प्रोसेस में भी वो दो चीजें बता रहे हैं और वो हम पढ़ेंगे। पिछली बार हमने देखा कि रात को जब भोर होती है तो प्रारंभ में क्या होता है, मैकेनिकल अनकॉन्शियस मूवमेंट होते हैं, फिजिकल कॉन्शियसनेस की तरफ हम जागते हैं, एग्जिस्टेंस के प्रति हम हैं फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिर क्या होता है, हमने पढ़ा था एंडलेस नीड इन थिंग्स, मेटीरियल नेचर, सारी जरूरतें, आवश्यकताएं, कामनाएं, लेकिन इसके पीछे क्या है, लॉन्गिंग, एस्पिरेशन। तो इसको हम बर्थ ऑफ डिजायर भी कह सकते हैं, बर्थ ऑफ एस्पिरेशन भी कह सकते हैं। श्री अरविंद के सिंबल में हम ये देखते हैं, मैटर एस्पायर्स, जड़ जगत अभीप्सा करता है। कैसे करता है, जड़ जगत कैसे अभीप्सा करेगा, थ्रू लाइफ, लाइट एंड लव। तो आप देखिए उसकी सीक्वेंस है, पहले लाइफ प्राणवंत होता है, प्राणवंत होकर जड़ जगत क्या अभीप्सा करता है, एक्सपैंड होने की, ग्रो करने की। अंदर में वही है, फाइनाइट टू द इन्फिनिट। तो अंदर अभीप्सा, बाहर डिजायर। अब नेक्स्ट लेवल पे क्या होता है, नेक्स्ट लेवल पे आएगा माइंड। तो ये जो प्राण है, जो लाइफ फोर्स है, वो क्या है, वो फोर्स सच्चिदानंद का जो सत है वो मेटेरियल एग्जिस्टेंस है। जो तपस है, फोर्स है, वो प्राण है, जीवन है। और जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, जिसमें नॉलेज, नॉलेज कॉन्शियसनेस इज बियॉन्ड नॉलेज, लेकिन नॉलेज उसका ऑब्जेक्टिवाइज रूप है। जब चेतना अपने को ऑब्जेक्टिवाइज करती है तो नॉलेज बनती है, फिर नॉलेज इग्नोरेंस बनती है। इसीलिए कॉन्शियसनेस इज बियॉन्ड इग्नोरेंस एंड नॉलेज। आप कभी पढ़ेंगे वो विद्यांच अविद्यांच यस्तद्वेदोभयम्, वो अविद्या के भी परे हैं, माता, माँ, डिवाइन मदर, बिकॉज शी इज सुप्रीम कॉन्शियसनेस, विद्या के भी परे हैं, इसीलिए इवन गॉड्स कैन नॉट अंडरस्टैंड हर, ये उपनिषद में बार बार आती है। तो इसमें अब हम विस्तार में नहीं जाएंगे, मैं लोभ संभरण कर रहा हूँ इसमें बहने का। पर मूल चीज ये है कि फिर माइंड के साथ चेतना का विकास होता है। लेकिन बाहर में क्या होता है, थॉट्स, आइडियाज, सीकिंग, अंदर में चेतना का एक जागरण होता है, और चेतना के जागरण के साथ ही उषा का आगमन होता है। अब यहां उषा दोनों लेवल पे काम कर रही है, उषा इज द डॉन, यही स्टेप्स होते हैं, जागते हैं, मैकेनिकल नीड्स, डिजायर्स, सर्टेन थिंग्स, भूख लगी, आप सबसे पहली चीज भूख लगी, प्यास लगी, कुछ करना है, जो भी, फिर आता है थॉट्स, शुरू होता है। और अंदर भी आप देखेंगे कि इवोल्यूशन की यही प्रोसेस है, मेटेरियल क्रिएशन, प्राणवंत जीवन, वाइटल क्रिएशन, उसके बाद थिंकिंग मैन, एंड देन कम्स उषा। अब उषा कौन है, सिंबल इल्यूमिनेशन की, और डॉन गॉडेस कहा गया है, दो चार शब्द उनके बारे में, पर शायद बीच में, हम लोग पेज 3 पर हैं, यहां रुके थे, कंपेल्ड रिन्यूड कंसेंट टू सी एंड फील, एफर्ट की चेष्टा के लिए प्रवृत्त होती है, हमारे अंदर प्रवृत्ति जागती है, निद्रा में प्रवृत्ति सो जाती है, जो भी चेष्टा चलती है अंदर अंदर चलती है, चेष्टा जागती है। हालांकि चाहे पिछले दिन कोलैप्स हुआ हो, पिछले दिन चाहे हम लोग झगड़ा करके सोए हों, हम लोग मतलब मनुष्य लोग, फिर सुबह उठ के आज मूड कैसा है, आप चेष्टा जागती है, शायद आज ठीक होगा, ऐसा होगा, और हर लेवल पर, कल ये काम नहीं हो पाया, शायद आज हो जाए, तो चेष्टा जागती है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, ए थॉट वॉज सोन इन दी अनसाउंडेड वॉइड, एबिस से निकल रही है सृष्टि, इनकॉन्शियस से, निश्चेतना से, उसके अंदर थॉट, थॉट के जन्म के साथ, थिंकिंग बीइंग के जन्म के साथ चेतना का आरोहण प्रारंभ हो जाता है कॉन्शियसली, उसके पहले हो रहा है अनकॉन्शियसली। थॉट क्या करता है, प्राणवंत जीव किस चीज के प्रति? अपनी डिजायर्स के प्रति. डिजायर्स क्या होती हैं? खाना पीना, संतति, ये होती है. और थॉट क्या होता है? वो क्लाइम करना चाहता है ऊपर की ओर. क्यों, क्या, कहां, कैसे. सो ए थॉट वॉज सोन इन द अनसाउंडेड वॉइड. अनसाउंडेड, जिसकी डेप्थ कोई नहीं जानता. ए सेंस वॉज बॉर्न विद इन द डार्कनेस डेप्थ. इंद्रिया और मन, ये दोनों एक साथ चलते हैं. इंद्रिया इंफॉर्मेशन देती है, माइंड क्या है, सिक्स सेंस है, वो इसको कोलेट करता है और वो सजग होता है, सचेत होता है. इसी तरह हमारी चेतना प्रारंभ करती है. ए मेमरी क्विवर्ड इन द हार्ट ऑफ टाइम. फिर स्मृति जागती है. बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है लेकिन अभी इसको नहीं. स्मृति, स्मृति कई तरह की होती है. एक होती है मानसिक स्मृति, कल ये हुआ था, आज ऐसा होना है. एक होती है प्राणिक स्मृति, इमोशंस. सो गया था व्यक्ति, खुशी खुशी सो गया, खुशी खुशी नहीं सोया था, दुख में सोया था लेकिन सो गया था. सुबह उठा, फिर वो दुख उसके एक इमोशनल स्मृति के रूप में वो यहाँ आ रहा है. वो थॉट से नहीं आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है. फिर होती है फिजिकल स्मृति, टाइपिंग, ड्राइविंग, फिजिकल स्मृति. और एक होती है साइकिक स्मृति. साइकिक स्मृति ऐसे नहीं बताती, अरे ये देखो इसको मैं परिचित हूं ना, पिछले जन्म में ये मेरा बच्चा था. नहीं, एक लगाव, एक अलग प्रकार का एफिनिटी वाला लगाव नहीं, एक डीप बॉन्ड जिसका कोई आप नहीं जान पाएंगे भेद. लेकिन एक, या साइकिक स्मृति जब आप कोई ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जिसकी जो मुड़ा हुआ है उस ओर, और अचानक मिलते हो, कभी कभी अकस्मात मिलते हो, और अचानक आपके अंदर एक हर्ष का संचार होता है. क्लासिक एग्जाम्पल इज, कोई ट्रेन में गया और सामने कोई व्यक्ति आया, अचानक उसने देखा कि उसके हाथ में माँ की रिंग. एक अलग प्रकार का एक संचार होता है. उस तरह की साइकिक स्मृतियां बहुत होती हैं. कोई स्थान पे गए, आश्रम आए, लगा हम घर आ गए. तो चैत्य की अपनी स्मृतियां हैं, वो मोमेंट्स उसके स्मरण में रहते हैं जिसमें आपका कॉन्टैक्ट हुआ है डिवाइन से. अगर हम अपने इस एक ही लाइफ के पास्ट को देखें और जोड़ें कि कौन से मोमेंट्स थे जो हम कह सकते हैं कि आहा वाली फीलिंग थी, आप देखें कि साइकिक स्मृति खुल जाएंगी. 10 मिनट की होंगी, नहीं मतलब साधकों की बात नहीं कर रहा हूं, या जो पथ पे चल रहे हैं, काउंटेड होंगी. वही सच्चे मोमेंट्स होते हैं. तो मेमोरी क्विवर्ड इन द हार्ट ऑफ टाइम. और वो फिर जोड़, मेमोरी क्यों क्विवर कर रही है? वो जोड़ रही है थ्रेड. हाँ, अब मेमोरी हर लेवल पे थ्रेड जोड़ रही है. माइंड के लेवल पर एक अनसॉल्व प्रॉब्लम, पजल, आज इसको ऐसे करूंगा, उसने थ्रेड जोड़ा. चैत्य के लेवल पर भी वो थ्रेड जोड़ रही है. अभीप्सा जागृत हो रही है, आगे को बढ़ रही है. एज इफ ए सोल लॉन्ग डेड वेयर मूव टू लिव. अब सोल डज नॉट डाई बट इट गोज थ्रू डेथ. यहां डेथ का मतलब यही है, इट गोज थ्रू डेथ एंड देन इट कम्स बैक इन टू अ न्यू फॉर्म, न्यू लाइफ. सो एज इफ ए सोल लॉन्ग डेड वेयर मूव टू लिव. As if a soul long dead were moved to live, but the oblivion that succeeds the fall had blotted the crowded tablets of the past. जब मृत्यु के द्वार से व्यक्ति गुजरता है, काफी कुछ उसने अंदर में, उसकी प्रगति हुई है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन उस द्वार से गुजरने के बाद जब फिर से आता है मानव देह में, वोम्ब के अंदर, उनके अंदर मतलब उस प्रोसेस से, तो एक समय लगता है उसको फिर से रिकनेक्ट होने में. इसलिए मां कहती है इट्स ए वेस्टफुल प्रोसेस. अब देखिए, हम सभी लोग मुड़े मां की ओर, अलग अलग तरीके से हम लोग आए. ये नहीं कि घर में, हो सकता है घर में था ये, लेकिन फिर भी हमारे जो एक इंडिविजुअल कनेक्शन होता है, कॉन्शियस कनेक्शन, इट टेक्स टाइम. अब सोचिए, फिर से आए हम लोग, फिर से बस्ता लेके स्कूल जाएं, बेवकूफियां करें, उसके बाद फिर एक कनेक्शन हो, तो ये ऑब्लिवियन का जो फेज होता है, जो जैसे गिरता है कोई और कुछ देर के लिए उसको स्मृति खो जाती है, सेरेब्रल कंकशन, वो उठ के पूछता है मैं कौन हूं, यहां कैसे आया। तो ये एक अवस्था होती है जिसके कारण जैसे एक सोल जब जागती है नए शरीर में तो वो भूल जाती है कि कौन थी। तो उसी प्रकार से जब हम जागते हैं तो ये नहीं कि ऑटोमेटिकली कंप्यूटर की तरह सारा डेटा आ गया, धीरे धीरे कल की अभीप्सा, समस्याएं, चैलेंजेस, ये सारे साथ साथ उगते हैं और वही हम देखते हैं उषा काल के आगमन के साथ। नया एफर्ट एंड ऑल दैट वॉज डिस्ट्रॉयड मस्ट बी रीबिल्ड एंड ओल्ड एक्सपीरियंस लेबर्ड आउट वंस मोर। कल का विफल प्रयास आज फिर प्रयास करें। ये प्रेरणा कहां से आ रही है? उषा के आगमन से। देखिए जब दिन उगता है तो ऑटोमेटिकली हम सबके अंदर एक आशा भी जागती है, ऑटोमेटिक है ये प्रोसेस। और यदि दिन के उगने पर भी आशा नहीं जागे तो कुछ सीरियस एक जिसको कहते हैं डिप्रेशन में व्यक्ति चला गया है, जब उसको दिन को भी रात दिखाई दे रही है। नहीं तो दिन को आप रात को एकदम ये बेकार है सब वो करके आप सोने गए, दिन को उठते ही फिर दिनचर्या भी प्रारंभ होती है, आप उस एफर्ट में लग जाते हो। तो ये प्रभाव है किसका? उषा का। आगमन मात्र से उषा के, उषा की इसीलिए महिमा गाई गई है वेदों में। ऋग्वेद में उषा इज दी डॉन गॉडेस ऑफ कोर्स, तो उनको दी मदर ऑफ काउ। काउ कौन है? रेडियंसेस। अब देखिए अभी रेडियंस नहीं आया, रेज नहीं उतरी है पूरी तरह, ग्लिमर है उषा। इसीलिए ऋषि सबसे पहले उषा को आह्वान करते हैं। इट्स ए काइंड ऑफ इनिशिएशन हम कह सकते हैं, अगर इनर प्रोसेस से करें। एस्पिरेशन जागी, एक इनिशिएशन हो गया, एक एनलाइटनमेंट की एक पहली ग्लिमर आई। नॉट एनलाइटनमेंट की जो अल्टीमेट, वो तो पूरी प्रोसेस बताएंगे श्री अरविंद, पर उषा के आगमन के साथ कोई चीज है जो अंदर प्रवेश करती है। तो शी इज डिस्क्राइब्ड एज, वही हम देखते हैं कि आदिति, शी इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द मदर ऑफ काओ, शी इज द इन्फिनिट कॉन्शियसनेस। तो इन्फिनिट कॉन्शियसनेस स्वयं को कैसे पहले रिवील करती है? एक उषा के रूप में, डॉन के रूप में, ग्लिमर के रूप में। अंदर में कोई चीज अचानक जाग जाती, अरे ये तो माँ है, कोई बताने वाला नहीं है, और माँ कहती है दैट इज द राइट वे, वो उषा। एंड जैसे ही ये अंदर में कोई भाव आ जाता है, शी इज द डिवाइन मदर। आप इसको लॉजिकली नहीं समझ सकते, तो फिर अब एक पूरी प्रोसेस जर्नी प्रारंभ हो जाएगी। तो ये कई लेवल्स पर ये इमेज है। अब यहां पे रिन्यूड कंसेंट है, ओल्ड एक्सपीरियंस लेबर्ड आउट वंस मोर। अब आता है महावाक्य, ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर। ये भाव जागता है ना सुबह, हो जाएगा अनलेस कोई घोर निराशावादी हो। लेकिन निराशावादी भी एफर्ट लगा रहा है, मतलब निराशा के पीछे आशा तो छिपी है, आशा निराशा में छिपी है, लेकिन आशा में निराशा नहीं है। देखिए वर्ड्स भी ऐसे हैं, इसको ह्यूमरसली हम लोग ऐसे भी कहते हैं, वुमेन के अंदर मैन है, तो निराशा के अंदर आशा, तभी आप एफर्ट करते हैं ना, कितने भी निराश हो आप एफर्ट करते हो। तो यहां पर है ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर, पावरफुल लाइन्स। उषा कौन है? गॉड टच है। जब आपके अंदर ये भाव जाग गया कि ये डिवाइन मदर है, ये गॉड टच है, क्योंकि इसके बिना आप पढ़ लोगे, लेक्चर दे देंगे लोग कि शी इज द डिवाइन मदर, आपके अंदर जुगू तक नहीं रहेंगे। क्यों? अभी रात है, अभी रात ही रहनी है आपके लिए। आप उन टिमटिमाते तारों की तरफ मुड़ोगे या वो कैंडल लाइट को समझोगे भगवान, लेकिन जैसे ही उषा काल आती है, शी इज द डिवाइन मदर, ये लोगों का अनुभव है। कैसे होता है ये? बिकॉज उषा का आगमन, और तब वो गॉड टच है, तब सब कुछ संभव है। ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर, ए होप स्टोल इन दैट हार्डली डेयर्ड टू बी। आशा जागती है उस स्पर्श से, भगवान के स्पर्श से। Amid the night's forlorn indifference, अंधकार में क्या है? इंडिफरेंस है। एक घना जब वो होता ही ना आशा ना निराशा, गहरी नींद में व्यक्ति सोया है उसके अंदर आशा का जागरण। लेकिन एज इफ सॉलिसिटेड इन एन एलियन वर्ल्ड विथ टिमिड एंड हैजार्डस इंस्टिंक्टिव ग्रेस, ऑर्फेंड एंड ड्रिवन आउट टू सीक ए होम, एन एरेंट मार्वल विद नो प्लेस टू लिव, इन टू ए फार ऑफ नूक ऑफ हेवन देयर केम ए स्लो मिरेकुलस जेस्चर्स डिम अपील। आप शब्दों को देखिए, शब्दों के जादूगर। एज इफ सॉलिसिटेड इन एन एलियन वर्ल्ड, लोग सो रहे हैं, अधिकांश लोगों को पता भी नहीं है, गफलत की नींद में सो रहे हैं, वो अनकॉन्शियस, और उषा काल का आगमन हो गया है। इसलिए हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त आप प्रतीक्षारत हो उषा के आने की, पर जनरली वर्ल्ड इज अस्लीप। तो एलियन वर्ल्ड, आप सोचिए कि उषा काल आ रहा है या उषा देवी आ रही हैं, तो आप क्या करेंगे? देवी के आगमन की तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे? तो एलियन वर्ल्ड, उनका वो संसार नहीं है, वो तो वहां से आ रही है, ब्रह्म लोक से आ रही है, ब्रह्म जया है, सूर्य लोक से आ रही है, लेकिन हम लोग हैं कि भेजा जा रहा है उनको यहां रेस्क्यू करने, लेकिन हम अपनी नींद में। ये अनुभव मेरा हुआ था एक जगह, जब विदेश में, नाम नहीं लूंगा, रिलिक्स लेके गए थे। तो अब हम लोगों को तो आदत है यहाँ की, उड़ीसा की, हिंदुस्तान की, लोग आए होंगे कितने सारे वहाँ एक व्यक्ति आया, वो भी क्यों हमको ले जाने के लिए एयरपोर्ट से सेंटर। तो मुझे लगा सच में, अरे शेरविंद आए, शेरविंद के रिलिक्स नहीं है, हम तो वैसे देखते हैं। और वो भी इसलिए कि भाई नेचुरली हमको ले जाना है, वो अगर रिलिक्स और नो रिलिक्स इतनी तो भेज ही देते हैं, कई जगह वो भी नहीं होता है। तो ये हम लोगों की सिचुएशन है कि रिलिक्स आ रहे हैं श्री अरविंद के, श्री अरविंद माता जी आ रहे हैं। जो लोग बड़े फॉर्चुनेट हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पर अधिकांश लोगों को क्या फर्क। तभी जब उड़ीसा में रिलिक्स आ रहे थे, माँ ने कहा था इफ ओनली द गवर्नमेंट इज विलिंग टू रिसीव इट, तोपों की सलामी के द्वारा, यही उड़ीसा में भी रिसीव किए थे, अदरवाइज शी मदरवाज रिफ्यूजिंग टू सेंड द रिलिक्स बिकॉज सी फेल्ट इनसाइड दैट बंगाल हैड रिजेक्टेड श्री अरबिंदो। तो अब एज इफ सॉलिसिटेड इन एन एलियन वर्ल्ड, दूसरी लाइन देखिए, विद टिमिड एंड हैजार्डस इंस्टिंक्टिव ग्रेस। टिमिड कौन होता है? संकोची। संकोच क्यों? जाऊं यहां तो, आप सोचिए आप कहीं एक टॉक देने चले गए श्री अरविंद माता जी पर, ये एक्सपीरियंस मेरा हो चुका है, एक 7-स्टार होटल में कैप्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज आए थे और जिन्होंने अरेंज की थी उनको लगा रहे ये बड़े बड़े पैसे वाले रुतबे वाले लोग टर्न हो जाएंगे, पता तो था, लेकिन अब मैं उनके उन्होंने बुलाया था, विदेश की बात है, चला गया। और जब मैं बोल रहा था मुझे लग रहा था मेरे शब्द जाकर वापस आ रहे हैं, जाकर वापस आ रहे हैं, कंक्रीट एक्सपीरियंस था। 10 मिनट के बाद मैं बैठ गया, मैंने कहा ये क्या, किसको बोल रहा हूं? तो टिमिड इज सेंस संकोच की, जाऊं कि नहीं जाऊं वहां पे, टिमिड। लेकिन हैजार्डस, इनमें से एक अगर जा गया तो उसको पहली बात क्या पता चलेगी, ये सब जिसका मैं मान कर रहा था, मैं अरबपति हूं मैं तो खकपति हूं, ये भाव जो है ना, ये क्योंकि उषा जब लाइट, इसीलिए लाइट अगर प्रीमैच्योरली आ जाए सारे मापदंड आपके उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। वे चीजें जिनको आप रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है ना, जिनको आप बहुत महत्व देते थे वो महत्वहीन हो जाएंगी, वे चीजें जिनको आप महत्व नहीं देते थे वो अचानक महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो हैजार्डस टिमिड भी हैं, हैजार्डस भी हैं और चार्मिंग भी हैं, इंस्टिंक्टिव ग्रेस, जिनको देख के हृदय के अंदर एक हर्ष का अनुभव होता है। देखिए उषा काल का वर्णन, ऑर्फेंड एंड ड्रिवन आउट टू सीक ए होम, स्वयं सूर्य ने उनको निष्कासित कर दिया है। पृथ्वी पर तो सूर्य नहीं है, लेकिन उनको सूर्य का प्रतिनिधित्व करना है। अब देखिए किसका वर्णन हो रहा है, सावित्री का वर्णन हो रहा है, लेकिन ये बाद में श्री अरविंद कनेक्ट करेंगे। ऑर्फेंड कहां से आई है, वो भूधरा की नहीं है, ब्रह्मलोक से जन्म लिया। यही चीज हम देखते हैं, सावित्री यज्ञ के द्वारा पैदा होती हैं, द्रौपदी यज्ञ के द्वारा पैदा होती हैं, माता जानकी यज्ञ के द्वारा पैदा होती हैं। एक सब कहानी है ना, डिवाइन मदर के एस्पेक्ट्स हैं ये, वो ऐसे नहीं आती हैं, वो तो शक्ति हैं, इन्फिनिट से आती हैं। कौन सी वोम्ब के थ्रू आएंगी, तो दे कम, ये स्टोरी इज ए वे ऑफ सेइंग, ये नहीं कि फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था, लेकिन वो यज्ञ के द्वारा तप किया, बुलाया। श्री अरविंद सावित्री में लिखते हैं, वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मॉर्टल बर्थ। तो आती है यहां पर, जहां पर कोई रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। ऑर्फेंड एंड ड्रिवन आउट टू सीक ए होम, एन एरेंट मार्वल विद नो प्लेस टू लिव। कौन है जो उनका आवाहन करेगा, सब देख रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, सब अपने अपने काम पे चल जा रहे हैं। उनका आवाहन, उनकी, उनको रिसीव करना, उनको धारण करना, प्रकाशित होना, ये तो मनुष्य नहीं चाहता। इंटू ए फार ऑफ नो हेवन, इंटू ए फार ऑफ नोक ऑफ हेवन देयर केम ए स्लो मिरेकुलस जेस्चर्स डिम अपील। अब ये क्यों आया, क्योंकि पहले हम देखते हैं एस्पिरेशन का मूवमेंट है, लॉन्गिंग है, प्रत्युत्तर में अभीप्सा के प्रत्युत्तर में ऊषा, और हेवन की ये जेस्चर है, हाँ मैंने सुन लिया है। तो वहां पे मिरेकुलस जेस्चर्स डिम अपील। मिरेकुलस क्यों है, कुछ पंक्तियों बाद आएगा। मिरेकुलस इसलिए क्योंकि वो पूरा अंधकार ऐसा लगता है केवल ऊषा के आगमन से ये गायब हो गया, मतलब जस्ट बाय द कमिंग ऑफ दैट लिटिल डॉन। सूर्य तो अभी प्रखर रूप से आया नहीं है, इवन सनरेज पूरी तरह नहीं डिसेंड की है, पर केवल उस दर्शन मात्र से लगता है अंधेरा छट गया। तो मिरेकुलस जेस्चर्स डिम अपील, द परसिस्टेंट थ्रिल ऑफ ए ट्रांसफिगरिंग टच पर्सुएडेड द इनर्ट ब्लैक क्वाइट्यूड एंड ब्यूटी एंड वंडर डिस्टर्ब द फील्ड्स ऑफ गॉड। सबसे पहले कौन रिस्पॉन्ड करते हैं, पुष्प, ट्रीज, यही माँ कहती है। न्यू क्रिएशन में भी यही होगा, उनको पता है ऊषा आ गई, खिलना शुरू हो जाएंगे, मधुमक्खियाँ अपनी अपनी जगह, चिड़िया चहचहाने लगेंगी, इनको पता चल गया है, कौवा मुर्गा इनको पता चल गया है कि दिख नहीं रही हैं, बट दे नो। तो ब्यूटी एंड वंडर, यहाँ डिस्टर्ब्ड क्यों है, वो जो नीरव शांति थी, कौन डिस्टर्ब महसूस करते हैं, जो सोना चाहते हैं, अब ये क्या हो गया, फिर एक दिन हो गया और रजाई लेके कुछ घंटे हम सो लें तो, लेकिन दे डोंट नो इट्स ब्यूटी एंड वंडर। अगर सुबह उठ के रियली कहीं पर भी आप देख लो, इट्स ए ब्यूटिफुल साइट, फीलिंग, ब्यूटिफुल फीलिंग, एक्सेप्ट हांगकांग, वहाँ पूरी रात पता नहीं क्या करते रहते हैं, घूमते, रेस्टलेस लोगों की तरह। 7-8 बजे लगे कि अभी बंद हुआ है कुछ सुबह के, वो पता नहीं विचित्र चीन के बारे में तो खिड़की से देखता, जरोके से नीचे, ये क्या कर रहे हैं, अभी भी कंफ्यूजन हो जाता था, समय क्या हुआ है, सारी रात निशाच है ऋषि को तो अब पता नहीं, शायद मुंबई में ऐसा होता, आई डोंट नो, पर लेकिन आप सो के जब उठते हैं और उषा काल का आगमन, परसुएडेड द इनर्ट ब्लैक क्वाइट्यूड, चेष्टारत होने लगता है, एंड ब्यूटी एंड वंडर डिस्टर्ब द फील्ड्स ऑफ गॉड, ए वांडरिंग हैंड ऑफ पेल एनचैंटेड लाइट दैट ग्लोड अलोंग ए फेडिंग मोमेंट्स ब्रिंग। देखिए इतना परफेक्ट डिस्क्रिप्शन, कालिदास को अगर कोई बीट कर सकता है तो श्री अरविंद है। इस तरह की पोएट्री जिसमें सेंसुअस जॉय की एक पराकाष्ठा है, उषा काल आती है, अब उसके देखिए मोमेंट ऐसा लगता है कि कितनी देर को रहेगी मुहूर्त, फेडिंग मोमेंट्स, चेंज हो रहा है, स्काई बहुत तेजी से बदल रहा है, इसलिए फेडिंग मोमेंट, और उसके साथ सब कुछ उसी से कंपेयर कर सकते हैं. फिक्स्ड दैट ग्लोड अलोंग ए फेडिंग मोमेंट्स ब्रिंग, फिक्स्ड विद गोल्ड पैनल एंड ओपेलेसेंट हिंज. अब गोल्ड पैनल तो वो जो लालिमा के साथ जो पीछे अब वो सूर्य आ रहा है ना, ऑरेंज कलर, ये प्रारंभ हो रहा है. ओपेलेसेंट, तो ओपेलेसेंट होता है जहां कई डॉट्स ऑफ लाइट, रंग बदल रही है स्काई, तो फेडिंग मोमेंट्स ब्रिंग, और जो आसमान है वो रंग बदल रहा है. तो वर्णन देखिए, आई एम श्योर, मैंने जो भी थोड़ा बहुत कालिदास को पढ़ा है, अनफॉर्चुनेटली संस्कृत में नहीं, सो आई कैन नॉट वाउच से फॉर इट, लेकिन शेयरबिंद की इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ी है उसकी भी, और इंग्लिश ट्रांसलेशन मेघदूतम की भी मैंने पूरी पढ़ी है. बट इसके सामने मतलब इट्स जस्ट अमेजिंग, जस्ट सी द पोएट्री डिस्क्रिप्शन. ए वांडरिंग हैंड ऑफ पेल एनचेंटेड लाइट, टच आया था, ऑल कैन बी डन. टच के पीछे क्या है, हाथ है, उंगली है, उसके पीछे हाथ है. अब वो शकल का वर्णन, हैंड, बाद में पूरा मुखमंडल प्रकट होगा. तो हैंड ऑफ पेल एनचेंटेड लाइट, जो प्रकाश अब दिख रहा है, that glowed along a fading moment's brink, fixed with gold panel and opalescent hinge, a gate of dreams ajar on mystery's verge. Na jaane kaun kaun se swapna bone ke liye aayi hai, kya kya ek din mein manushya ke andar kitni prakar ki nayi aashayein jagengi. One lucent corner विंडोइंग हिडन थिंग्स, आकाश के उस पार. इधर को तो हम लोग जानते हैं भाई क्या है, रात को सो गए नहीं दिख रहा है लेकिन पता है, लेकिन उस पार क्या है. देखिए अब ये हो गया ना, अंदर का बाहर का दोनों की इमेज, आकाश में क्या है, आकाश के पार क्या है, क्या छिपा है, कौन सा रहस्य. वो सूर्य जो तारों की राशि के अंदर भी नहीं दिख रहा था, वो प्रकट होने को है. Forced the world's blind immensity to sight. अब ये जो है ना forced, कई जगहों पर हम पढ़ेंगे सावित्री में, इसलिए भी ना endless, heedless mother of the universe, उसको वो push करता है endless longing in things. तो उसी प्रकार से एक लंबा preparation होता है, रात होती है जीवन की जिसमें हम प्रार्थनारत होते हैं, जो candles हैं, जो तारे हैं, क्या सच में सूर्य होता है, डिस्कशन चल रहा है, डिबेट हो रहा है, टीवी चैनल्स सूर्य होता है कि नहीं होता है. इमेजिन लंबी रात, वैदिक ऋषि नौ नौ महीने प्रतीक्षा करते थे सोलर लाइट हो जो एंटार्क्टिक आर्कटिक में, तो ऐसे प्रतीक्षा रहते इंसान होगा कि नहीं. एक कैंडल कैरी होगा, दूसरी कैरी नहीं होगा, एक कैरी तुमको बस विश्वास कि तुम अंधविश्वासी हो, मूर्ख हो, तो कहता है पता नहीं हमारे पुरखों ने तो ये बताया है, तीसरी तो सोने ही चली गई, स्निफ आउट हो गई, बाकी दोनों भी थक करके सो गई, एक बेचारी चुपचाप जागती रही, मैं देखूं तो कुछ होता है कि नहीं. और फिर वो सूर्य का जब आया तो कैंडल ने क्या देखा, उफ, कल्पना के भी परे है ये, प्रकाश होता है इस पर डिबेट हो रहा था, लेकिन वो क्या होता है. फोर्स द वर्ल्ड्स ब्लाइंड इमेंसिटी टू साइट, ऐसे ही होता है भगवान के एडवेंट और कृत्य. An earth glow unexpectedly divine. और अब आता है master moment. The darkness failed and slipped like a falling cloak from the reclining body of a god. पृथ्वी एक देवी है, मनुष्य के अंदर भी एक देवत्व छिपा है, दिव्यत्व छिपा है, लेकिन वो ignorance की cloak में है. हम लोग एक दूसरे के कपड़े को देख के जज करते हैं, अच्छे कपड़े में आया है, ब्रांडेड में, बहुत बड़ा आदमी है, मर्सिडीज से उतरा है, बहुत बड़ा चोर उचक्का है, दूसरों की चोरी करके इतनी बड़ी, मतलब नहीं सच कह रहा हूं, मेरे मन में तो यही आता है जब मैं देखता हूं किसी को छे छे गाड़ियां हैं, आपने किसी की तो चोरी की है, आपने कहीं तो गड्ढा किया है. अगर आप ऑनेस्ट एक जस्ट मैन होते तो शेयर करते. मेहनत से कमाया ये चूरन है. पॉइंट इज कि आपने मेहनत से कमाया, आपके नहीं, अब चूंकि ये बात हो गई, आपके कर्मचारी हैं, मान लो 10 कर्मचारी हैं और आपने कमाया, आप करोड़पति हैं, दूसरों को लखपति तो कम से कम बनाओ अच्छे से. क्योंकि अब सबकी, इसीलिए ना, ये तो चोरी की है ना आपने, तो इसमें गलत बात कुछ नहीं है. तो वो एक, लेकिन हम यही देखते हैं, अरे इससे उतरा, अरे वो देहाती, देखो भारत का वो गांव की भाषा गंवार, उसको तो आती नहीं, संस्कृत भी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, हम सोचते क्या है गंवार है. बात तो करके देखो, यही तो माता जी को किसी ने कहा था, एक फ्रेंच जर्नलिस्ट ने, इंडिया में इलिटरेट ये सब, माने कहा ब्लाइंडेड बाय अपीयरेंसेस एंड प्रेजुडिस. वो उस भगवान के द्वार से गुजर गया जहां उसको अपने सारे उत्तर मिल जाते. हम लोग देखते हैं, आपको तमिलनाडु में आप देखेंगे कि क्या सुंदर कोलम करती इन, मैं यहाँ की बात, सब जगह ऐसे ही है स्त्रियों का, पर मैंने यहाँ देखा है वो बेचारी घर भी संभालती, बाहर भी काम करती हैं. दैट्स वाई जितने वर्कर्स आते हैं ना, आई रियली फील, लेकिन स्माइल करती हैं, हंसती हैं, खुश रहती हैं. हम लोग यहाँ सब माता जी दे रही हैं. उसके बाद भी खुश रहना कठिन होता है, ये नेचुरली हैप्पी हैं, ये तो रोज की बात है, हम देखते हैं. आदमी के पास सब मिला है, रिच आदमी बाहर में, हर किसी की है, यही की बात नहीं कर, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके अंदर ये, वो पढ़, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अनलेटर्ड है, इसलिए उनका माइंड उतनी कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं है, एंड दे आर नेचुरली हैप्पी. तो यहां वो जो भाव है कि जो अंदर दिवत्व छिपा है, दिवत्व इसको कौन ढकता है, माइंड, माइंड इग्नोरेंस के लेयर्स बना बना के, जो एक स्पॉन्टेनियस, एक सिंपल सिंप्लिसिटी में आपको दिखाई देगी, वो लूज हो जाता है, वही तो इग्नोरेंस है. अज्ञान तो होता है माइंड के पहले भी, पशु में भी है, लेकिन फिर भी पशु एक स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स देते हैं. माइंड उसको कहते हैं ना, वो काले कपड़े को इतने जरी लगा देता है, वो छोटी सी आँख उसको भी शायद ढक दे, उसमें भी जाला लगा देता है, ऊपर से नीचे तक बुरके में डाल देता है आपको अज्ञान के. अब आप पते नहीं अंदर आदमी है कि औरत, अच्छा आदमी सज्जन है कि दुर्जन है, अब वो कुछ नहीं पता, क्योंकि ये अज्ञान के चोले में ढका हुआ है. नहीं, इमेजेस जीवन में यही दिखाती है ना. लेकिन हो सकता है अंदर में एक ब्यूटी और वंडर छिपा हो सकता है ना, ब्यूटी एंड वंडर में भी हाइडिंग, एक ग्रेट पॉसिबिलिटी में भी हाइडिंग, एक दिव्यत्व की. आप बाहर आने तो दो, लेकिन लोग डरते हैं या जो भी है कारण, ये सिंबल है इसका. हार्ट रिलीजन जो होते हैं, जो नारी को एकदम घर के अंदर, वही है इग्नोरेंस के अंदर, लेकिन उसको अगर आप बाहर आने देते, इसीलिए वही राष्ट्र अल्टीमेटली डेवलप करता है जहां नारी का सम्मान होता है, ये फैक्ट है. जहां नहीं उसका, आज नहीं तो कल पतन होगा. डोंट गो बाई ब्लैक डॉलर. तो ये पूरा इतना सुंदर वर्णन है, उषा काल का आगमन हो जाता है, नई स्फूर्णा जागती और अंधकार भाग जाता है, और दिव्यत्व जो छिपा हुआ है वो प्रकट होने लगता है. ये हमारे अंदर की घटना है, इसी चीज को श्री अरविंद बाहर की इमेजेस से समझा रहे हैं. अब इसको हम लोग एक बार पढ़ लेंगे फिर रुकेंगे. ए थॉट वॉज सोन इन द अनसाउंडेड वॉइड, ए सेंस वॉज बॉर्न विद इन द डार्कनेस डेप्थ्स, ए मेमरी क्विवर्ड इन द हार्ट ऑफ टाइम, एज इफ ए सोल लॉन्ग डेड वेयर मूव टू लिव, बट द ऑब्लिवियन that succeeds the fall had blotted the crowded tablets of the past, and all that was destroyed must be rebuilt. Crowded tablet, ये word, tablet जिस पर हम लिखते हैं, और वो एक के बाद एक बहुत कुछ लिखा हुआ है, जो उस दिन आपको याद था, नोटबुक में जॉटिंग की थी, destroyed, next day आपको पता नहीं चल रहा है. As if a soul long dead were moved to live, but the oblivion that succeeds the fall had blotted the crowded tablets of the past, and all that was destroyed must be rebuilt, and old experience labored out once more. All can be done if the God touches there. All can be done if the God touches there. All can be done if the God touches there. A hope stole in that hardly dared to be. Amid the night's forlorn indifference, as if solicited in an alien world, as if solicited in an alien world with timid and hazardous instinctive grace, orphaned and driven out to seek a home, an errant marvel with no place to live, into a far-off nook of heaven there came a slow, miraculous gestures, dim appeal, the persistent thrill of a transfiguring touch persuaded the inert black quietude, and beauty and wonder disturbed the fields of God. A wandering hand of pale, enchanted light that glowed along a fading moment's brink, fixed with gold panel and opalescent hinge, a gate of dreams ajar on mystery's verge. One lucent corner, windowing hidden things, forced the world's blind immensity to sight. The darkness failed and slipped like a falling cloak from the reclining body of a god.